नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु तथा नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा वस्तु और ऊर्जा का निर्बाध परिवहन भारत की उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए ईरान की प्रतिबद्धता व्यक्त की और संवाद तथा राजनयिक माध्यमों से समाधान का आग्रह किया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि इराक में अमेरिका का KC-135 ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान ईरान के खिलाफ अभियान का हिस्सा था। सेना ने कहा कि दुर्घटना गोलीबारी के कारण नहीं हुई। मध्य पूर्व की निगरानी करने वाली अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि अभियान में दो विमान शामिल थे, जिनमें से एक सुरक्षित उतर गया जबकि दूसरा पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि वे खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद करके अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने का निश्चय किया है। देश के सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद ये उनका पहला बयान है। इस बीच पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों में ताजा हमलों और हवाई बाधा की घटनाएं तेज हुई हैं। इसराइल की सेना ने बताया है कि उनके विमानों ने बसीज अर्धसैनिक बल द्वारा संचालित जांच चौकियों को निशाना बनाकर तेहरान में हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए जारी करेंगे।
गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से अंतरित करेंगे। फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़कर 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। विभाग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना में कही गई बात का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस अनिश्चितता को देखते हुए आपूर्ति विभाग ने जनता को इन उत्पादों का सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और PNG की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बताया कि रसोई गैस की बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। वहीं केरल सरकार ने लोगों से रसोई गैस की बुकिंग में अफरा तफरी न करने का आग्रह किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सूत्रों ने बताया कि तेल कंपनियां स्थिति को संभालने में सक्षम हैं और बुकिंग के अनुसार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। संसद में आज 2025-26 के दूसरे चरण के अनुपूरक अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा होगी और उस पर मतदान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चर्चा का जवाब देंगी। राज्यसभा में आज भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच उपयोगी खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग और अमेरिका के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय के निदेशक सारा कार्टर ने अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 69वें सत्र के दौरान मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अप्रैल 2026 में अमेरिका भारत मादक पदार्थ विरोधी कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। भारत ने FIH हॉकी महिला विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने हैदराबाद में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।